लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह के अवसर पर पोप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के सामने सद्गुणों पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हुए विवेकशीलता पर चिंतन किया। उनकी धर्म शिक्षा माला को मॉन्सिनियर पियर लुइजी जिरोली ने प्रस्तुत किया। संत पापा ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Adesso sentiremo la catechesi di oggi, sempre sulla linea dei vizi e virtù. Io ho chiesto a Monsignore di leggerla.
प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। अब हम आज की धर्म शिक्षा सुनेंगे जो बुराइयों और सद्गुणों से संबंधित है। मैंने मॉन्सिनियर से इसे पढ़ने के लिए आग्रह किया है क्योंकि मैं अभी भी नहीं पढ़ सकता। मॉन्सिनियर जिरोली ने धर्म शिक्षा को प्रस्तुत करते हुए कहा,
La catechesi di oggi la dedichiamo alla virtù della prudenza.
हम आज की धर्म शिक्षा को विवेकशीलता के सद्गुण के लिए समर्पित कर रहे हैं। न्याय, धैर्य और संयम के साथ यह तथाकथित प्रमुख सद्गुणों में से एक है जो ख्रिस्तियों का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि प्राचीन ज्ञान की विरासत से संबंधित है, खासकर यूनानी दार्शनिकों की। इसलिए सद्गुण मुलाकात एवं सांस्कृतिक समावेशीकरण के काम के लिए सबसे दिलचस्प विषयों में से एक था। मध्ययुगीन लेखों में सद्गुणों की प्रस्तुति केवल आत्मा के सकारात्मक गुणों की सूची नहीं है। ख्रिस्ते प्रकाशना के आलोक में शास्त्रीय लेखकों की ओर लौटते हुए ईश शास्त्रियों ने सद्गुणों के सप्तक, तीन ईश शास्त्रीय एवं चार प्रमुख सद्गुणों की कल्पना एक जीवित शरीर के अंग के रूप में की है जिसमें प्रत्येक गुण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण स्थान होता है। आवश्यक गुण एवं सहायक गुण स्तंभ, खम्भे और आधार के समान हैं। शायद व्यक्ति और उसकी अच्छाई के प्रति निरंतर आकांक्षा के बीच सामंजस्य के विचार को मध्ययुगीन महागिरजाघर से बेहतर कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो आइए विवेकशीलता के सद्गुण से शुरू करें।
Essa non è la virtù della persona timorosa. Sempre titubante, circa l'azione da intraprendere.
यह डरपोक व्यक्ति का गुण नहीं है कि वह क्या कदम उठाए इसके बारे में हमेशा झिझकता रहे। इसकी ऐसी व्याख्या गलत होगी। यह महज सावधानी भी नहीं है। विवेक को प्रधानता देने का अर्थ है कि मनुष्य का कार्य उसकी बुद्धि और स्वतंत्रता के हाथों में है।
La persona prudente è creativa.
विवेकपूर्ण व्यक्ति रचनात्मक होता है। वह तर्क करता है, मूल्यांकन करता है, वास्तविकता की जटिलता को समझने की कोशिश करता है और खुद को भावनाओं, आलस्य, दबाव और भ्रम के वश में होने नहीं देता।
In un mondo dominato dall'apparire, dai pensieri superficiali.
अतः दिखावे, सतही विचारों, अच्छे और बुरे लोगों की तुच्छता से प्रभावित दुनिया में विवेक के प्राचीन सीख को पुनः जागृत किया जाना चाहिए। अरस्तु का अनुसरण करते हुए संत थॉमस ने इसे क्रियाओं की सही प्रणाली कहा था। यह कार्यों को अच्छाई की ओर निर्देशित करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है। इस कारण से इसे गुणों का प्रशिक्षक कहा जाता है।
Prudente è colui o colei che è capace di scegliere.
विवेकशील वे लोग होते हैं जो चयन करने में सक्षम हैं। जब तक यह किताबों में रहता है जीवन हमेशा आसान होता है, लेकिन दैनिक जीवन की हवाओं और लहरों के बीच यह दूसरी बात है। अक्सर हम अनिश्चित होते और नहीं जानते कि किस रास्ते पर जाना है।
Chi è prudente non sceglie a caso.
विवेकशील लोग संयोग से चुनाव नहीं करते. सर्वप्रथम वे जानते कि वे क्या चाहते हैं. उसके बाद वे परिस्थितियों का आकलन करते हैं, सलाह लेते हैं और व्यापक दृष्टिकोण एवं आंतरिक स्वतंत्रता के साथ चुनाव करते हैं कि किस रास्ते पर चलना है. इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलतियां नहीं करते. आखिर हम सभी इंसान हैं, लेकिन कम से कम वे बड़ी गलतियों से बच जाते हैं. दुर्भाग्य से हर माहौल में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समस्याओं को साधारण चुटकुलों से टाल देता है या विवाद भड़का देता है.
La prudenza invece è la qualità di chi è chiamato a governare.
इसके बजाय विवेकशीलता उन लोगों का आचरण है जिन्हें शासन करने के लिए बुलाया जाता है. यह जानते हुए कि प्रशासन का काम कठिन है, कि इसके कई दृष्टिकोण हैं और किसी को इसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, कि किसी को कुछ लोगों का नहीं बल्कि सभी लोगों का भला करना चाहिए.
La prudenza insegna anche che, come si suol dire, l'ottimo è nemico del bene.
विवेकशीलता यह भी सिखलाता है, जैसा कि कहा जाता है, उत्कृष्ट अच्छाई का दुश्मन है. वास्तव में कुछ परिस्थितियों में बहुत अधिक उत्साह आपदाओं का कारण बन सकता है या उस निर्माण को बर्बाद कर सकता है जिसके लिए धीरे धीरे बढ़ने की आवश्यकता है, या झगड़ों और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है. इससे हिंसा भी भड़क सकती है.
La persona prudente sa custodire la memoria del passato.
जबकि विवेकशील व्यक्ति जानता है कि अतीत की स्मृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए. भविष्य के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि परंपरा ज्ञान की विरासत है. जीवन नई और पुरानी चीजों के निरंतर अतिव्यापी क्रिया से बना है, और हमेशा यह सोचना अच्छा नहीं है कि दुनिया हमसे शुरू होती है. हमें शुरू से होने वाली समस्याओं से निपटना होगा. विवेकशील व्यक्ति दूरदर्शी होता है. एक बार जब कोई व्यक्ति प्रयास करने का लक्ष्य तय कर लेता है, तो उस तक पहुंचने के लिए सभी साधन प्राप्त करना भी आवश्यक है. सुसमाचार के कई अंश हमें विवेकशीलता की शिक्षा देते हैं. उदाहरण के लिए,
è prudente chi costruisce la sua casa sulla roccia.
विवेकशील व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है और अविवेकी अपना घर रेत पर बनाता है. विवेकशील कुंवारियां अपने दियों के साथ तेल ले जाती हैं और मूर्ख तेल नहीं ले जाती.
La vita cristiana è un connubio di semplicità e di scaltrezza.
इस प्रकार ख्रिस्ते जीवन सादगी और चतुराई का मिश्रण है. मिशन के लिए अपने शिष्यों को तैयार करते हुए यीशु सलाह देते हैं,
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi.
देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों के समान भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान चतुर और कबूतरों के समान निष्कपट बनो. कहने का अर्थ है कि ईश्वर हमें केवल संत बनाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हम बुद्धिमान संत बने, क्योंकि विवेकशीलता के बिना गलत रास्ता अपनाना पल भर की गलती होगी. इसके साथ ही धर्म शिक्षा माला समाप्त हुए. तत्पश्चात संत पापा ने युवाओं, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों की विशेष रूप से याद की.
Mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli.
और अंत में हे हमारे पिता, प्रार्थना का पाठ करते हुए सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen. वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार या आमदर्शन समारोह के दौरान अपनी धर्म शिक्षा माला में विवेकशीलता के गुण पर प्रकाश डाला और कहा कि यह गुण बुद्धिमता और रचनात्मकता को प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जिससे हमें हमारे जीवन की जटिलता को समझने और संभावित समाधानों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों से इस विशेष गुण को हासिल करने हेतु प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हम प्रभु से विवेकशीलता के गुण को विकसित करने में मदद करने के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले तूफानों और हवाओं के बीच हम अपनी आधारशिला मसीह में दृढ़ बने रह सकें। और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अंत में यूक्रेन और पौत्र भूमि के लिए प्रार्थना के अनुरोध को नवीनीकृत किया और लड़ाई को समाप्त करने के लिए अपील शुरू की। राज्य सचिवालय के फादर पियर लुइजी जिरोली द्वारा धर्म शिक्षा को पढ़ने के बाद संत पापा इताली भाषी तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन करने के लिए मंच पर आए और कहा, हम यूक्रेन और पवित्र भूमि फिलिस्तीन इसराइल के युद्धग्रस्त लोगों को संत जोसेफ को समर्पित करते हैं, जो युद्ध की भयावहता से बहुत पीड़ित हैं। 19 मार्च को विश्वव्यापी कलीसिया द्वारा संत जोसेफ का पर्व मनाए जाने के एक दिन बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने यह नवीनतम अपील जारी की। अपने पूरे परमाध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान संत पापा के दिल में धन्य माता मरियम के पति संत जोसेफ के लिए एक विशेष स्थान रहा है। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक संत जोसेफ को समर्पित एक विशेष वर्ष घोषित किया था। संत पापा ने कहा, आइए हम कभी न भूलें, युद्ध हमेशा हार होता है, युद्ध में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले 24 मार्च को राष्ट्रीय जीवन दिवस मना रहे पोलिस तीर्थयात्रियों को बधाई देते हुए फादर जिरोली ने संत पापा फ्रांसिस के सपने का उल्लेख किया। कुछ साल पहले यूरोप के बारे में लिखते हुए व्यक्त किया गया था कि पोलैंड एक ऐसी भूमि है जो जीवन के हर पल में जीवन की रक्षा करती है। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है, तब से लेकर इसके प्राकृतिक अंत तक होता है। कोई भी जीवन का स्वामी नहीं है, ना तो अपना और ना ही दूसरों का। और संत पापा फ्रांसिस ने 19 से 21 मार्च तक स्पेन में होने वाले विश्व ग्रामीण मंच के 8वें वैश्विक सम्मेलन के प्रतिभागियों को भेजे गए एक संदेश में प्रोत्साहन भरे शब्दों के साथ परिवार के किसानों के प्रति कलीसिया की निकटता व्यक्त की है। सम्मेलन पारिवारिक खेती, हमारे ग्रह की स्थिरता और भूख मिटाने, असमानता को कम करने और हमारे ग्रह के प्रबंधन को बढ़ावा देने की सामान्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विश्व ग्रामीण मंच के अध्यक्ष मार्टिन को भेजे अपने संदेश में संत पापा ने कृषक परिवारों को उनके काम करने के सहायक तरीके और भूमि पर खेती करने के सम्मानजनक और सौम्य तरीके के लिए प्रशंसा की। वे लिखते हैं, वे कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक समावेशी, लचीला और कुशल बनाने के लिए मौलिक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने लोगों की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने और वैश्विक खाद्य उत्पादन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद वे गरीबी और अवसरों की कमी से प्रभावित होते रहते हैं। उन्होंने एक दूसरे को जुट करने वाले बंधनों को मजबूत करने, उनकी धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और कृषि प्रथाओं का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया। संत पापा ने इस क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यक भूमिका की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवारों के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश का प्रतिनिधित्व करती हैं अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए एक ठोस आधार, खासकर विवेकशील देशों में जहां वे न केवल लाभार्थी हैं, लेकिन जहां वे रहती हैं, उन समाजों में प्रगति के वास्तविक चालक हैं। संत पापा ने कृषि में युवाओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा, युवा लोग हमें जो उपहार देते हैं वह नवोन्मेषी समाधानों का उपहार है। पुरानी समस्याएं और परिवर्तनों का विरोध करने वाली अदूरदर्शी सोच से प्रभावित न होने का साहस। उधर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव कल बाल्कन देश के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलेंगे। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघर परम धर्म पीठ के साथ बुनियादी समझौते के कार्यान्वयन के लिए मिश्रित आयोग के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर की मोंटेनेग्रो की यात्रा कल 21 मार्च से 24 मार्च तक होगी। अकाउंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गणतंत्र के राष्ट्रपति जाकोब मिलाटोक्विक के साथ बैठक शुक्रवार 22 तारीख को निर्धारित है। उसके बाद संसद के अध्यक्ष एंड्रीजा मैंडिक और प्रधानमंत्री मिलोजको स्पाजिक के साथ बैठक होगी। उसी दिन महाधर्माध्यक्ष गल्लाघर परम धर्म पीठ और मोंटेनेग्रो के बीच बुनियादी समझौते के कार्यान्वयन के लिए मिश्रित आयोग के सत्र के उद्घाटन में भाग लेंगे। शनिवार 23 मार्च को कोटार धर्म प्रांत के कैथोलिक समुदाय के साथ एक बैठक होगी, जिसके दौरान महाधर्माध्यक्ष संत ट्राइफन महागिरजाघर में पवित्र यूकारिस्तीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रविवार 24 मार्च को यात्रा के अंतिम दिन कैथोलिक समुदाय के साथ बैठक होगी और सन पेत्रुस सह महागिरजाघर में पवित्र यूकारिस्तीय समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।